السلام علیکم.
بتائیے
کیا خدمت کر سکتا ہوں
آپ سے؟ ایک چھوٹا سا کام تھا سمدھی صاحب.
جی فرمائیے.
یہاں بات کرنا مناسب نہیں ہے, کہیں اور چلتے.
کہاں؟
چلنے تو دیں, بتا دیں گے.
ہیلو.
فرمائیے.
مجھے شکوفہ صاحب سے بات کرنی ہے. کامران شکوفہ.
جناب ان کا فون بند کر دیا گیا, ان سے بات نہیں ہو سکتی.
بند کر دیا ہے؟
میڈم, میں نہیں چاہتا کسی کو پتا چلے یہاں کا ایڈریس میں نے آپ کو بتایا ہے, خاص طور پر دلدار صاحب.
کچھ نہیں ہوگا.
اچھا, خدا حافظ.
خدا حافظ.
چلو اب یہ گھنٹی بجانا, رہنے تو دروازہ کھلا ہے.
مجھے آپ کے پاس بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا.
چلیں کوئی بات نہیں, پہلے یہ بتائیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟
جی جی, میں بالکل ٹھیک ہوں اور مکمل ہوش و حواس میں ہوں. اگر آپ کو شک ہے تو میں آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھا سکتی ہوں.
میں معافی چاہتا ہوں آپ سے.
کوئی بات نہیں.
دیکھیے دلدار صاحبہ, ہر کام قانونی طریقے سے ہونا چاہیے.
جی جی, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, میں حاضر ہوں.
بہت شکریہ. بہرحال آپ سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے کئی بار آپ کو فون بھی کیے تھے اور پیغام بھی بھجوائے تھے, اور آپ کو یاد ہے ایک بار میں خود بھی آیا تھا.
جی ہاں مجھے یاد ہے, نہیں بھولی.
یہ اچھا ہوگا کہ ہم اپنے اصل موضوع پر آ جائیں.
جی ہاں, آپ کے والد محترم سے میری کافی تکرار رہی, مگر اس تکرار کا انجام بخیر و خوبی ہوا. کافی مالی مشکلات تھیں, البتہ مجھے اس بیچ کافی تکلیف کا سامنا ہوا. میں نے آپ کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ مقابلہ کروں گا میں, اور میں نے کیا, اسی لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. آپ کی والدہ نسرین صاحبہ اپنا تمام لیگل کام مجھ سے کرواتی تھیں, کئی سال سے میں ان کا قابل اعتماد وکیل ہوں. آپ کی والدہ نے آپ کی شادی کے وقت یہ فیصلہ کیا تھا, یہ گھر اور کمپنی اور جو بھی جائیداد ہے وہ آپ کے نام ہو جائے. ایک مامتا بھرا تحفہ, یا یہ کہہ لیں کہ ایک سرپرائز. یہ آپ کی مرحومہ والدہ کے دستخط ہیں, اور یہ آپ کو دکھانا میرا فرض تھا. اب دستخط اور وصیت کے مطابق آپ تمام جائیداد کی مالک ہیں.
تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟
صرف چند دستخط. اچھا, آپ شناختی کارڈ اور ملکیت کے کاغذات تو لائی ہیں نا؟
ملکیت کے کاغذات؟
جی ہاں, گھر اور کمپنی وغیرہ کے پیپرز.
جی, شناختی کارڈ تو میرے پاس ہے, مگر کاغذات میرے پاس نہیں.
نہیں ہے؟
نہیں, مجھے تو بتایا تھا کہ کاغذات آپ کے پاس
ہو سکتے ہیں تمہارے بابا کے پاس ہوں.
نہیں نہیں نسرین صاحبہ, وہ پیپرز ان کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتی تھیں.
لیکن میرے پاس تو کوئی بھی کاغذات نہیں.
تو پھر پیپر گئے کہاں؟
تمہیں معلوم ہے؟
کتنی بار میں آپ سے کہوں انسپیکٹر صاحب, میں ان کو نہیں جانتا. جانتا ہوں کیا؟ نہیں جانتا.
میں نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کو جانتے ہو, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے ان کو فون کر کر ان سے ملاقات طے کی تھی.
ارے سرکار, مجھے اور بھی کام ہے, میں ان کو فون کیوں کروں گا؟ میں نے کوئی فون نہیں کیا.
ٹھیک ہے, اب زیادہ شور مت مچاؤ.
جی سرکار, جو حکم. میں نے
انہیں
کوئی فون نہیں کیا, میں نے فون کیوں کروں گا؟
اعتراف نہیں کرنا چاہتے.
ٹھیک ہے سرکار, جب سونا ہی خالص ہے تو جتنی بھی قسمیں کھا لو.
ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اگر تم ماننے ہی کو تیار نہیں تو یہ کیسے سن
لیتے ہیں؟
پہچانتے ہو اس کو؟
نہیں کیا میں نے کوئی فون. یہ بیٹھے ہیں سامنے, پوچھ لو ان سے. نہیں کیا
فون؟ نہیں کیا.
ہاں ہاں صاحب, نہیں کیا.
سنو یہ آواز کس کی؟
ہاں صاحب سنا.
آپ لوگوں کو
یہ کون ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟
کام کرو.
کون بول رہا ہے؟
کیا پتا, یہ میری آواز نہیں.
بند کرو یہ ڈرامے بازی,
بس
کرو.
اور وہاں سے پانچ ستون گننا.
میں تو مہرا بنایا گیا ہوں صاحب, یہ سب کیا کرایا کامران کا ہے.
یہ ہوئی نا بات, اب سچ سچ بتاؤ پوری کہانی کیا ہے.
مجھ سے کہہ رہا تھا میں ایک مہمان لے کے آ رہا ہوں, مجھے کیا پتا تھا ہوا کیا ہے. میں تو کوئی غلط کام کرتا ہی نہیں صاحب.
چوری اور ڈکیتی, منشیات, سب کا لین دین کرتے ہو, तुम्हारी फाइल पढ़ चुका हूँ।
ये सब मेरी फाइल में? गलत काम? साहब ये जितने भी गलत काम है इनका बोझ तो एक माल ले जाने वाली ट्रेन भी नहीं उठा सकती।
एक अगवा का केस भी इस ट्रेन में भरो और इस ट्रेन को जल्दी से रवाना करो।
बेकसूर हूँ इंस्पेक्टर साहब, आपको आपके बच्चों का वास्ता है, इस बार माफ कर दें। आपका बहुत बड़ा दिल है, मेरे यहाँ चंद दिन पहले ही बेटा हुआ है, मैं नहीं चाहता उससे दूर हो जाऊं। मैं फिर कह रहा हूँ मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ।
बातों से कुछ नहीं होता, साबित करके दिखाना है तुम्हें।
जैसे आपका हुक्म, मैं आपका नौकर जनाब, आपको करके दिखाऊंगा। अगर मैंने नहीं किया, ये दोनों कान काट के मेरे अपनी मेज पे सजा लेना जनाब।
तुम कहाँ हो लड़की?
अस्सलाम वालेकुम, मैं हायदा हूँ।
शोरा घर पर नहीं है।
कहाँ है?
मुझसे पूछ रही हो? क्या वो तुम्हारे पास नहीं आई?
नहीं।
लेकिन वो तो सुबह से गई और अब तक कोई फोन नहीं किया उसने।
आप परेशान मत हो, जहाँ भी होगी रात तक आ जाएगी।
हायदा सुनो, मैं तुम्हें पहले भी आराम से समझा चुकी हूँ कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो।
अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया?
देखो मैं तुम्हें आराम से समझा रही हूँ, अगर उस बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी।
मेरा क्या लेना देना आंटी, वो अपने शोहर से शिकवा रखती है, जाइए उसका गिरेबान पकड़िए।
अगर उसके शोहर को पता चल गया कि आप उसकी गलत हरकतों में उसकी मदद कर रही हैं तो वो आपके खिलाफ FIR कटवा देगा।
मुझे उससे क्या?
बदतमीज लड़की।
अम्मी 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 अम्मी, आंटी कौन है जो आ रही है? देखें दोनों आंटी आ गई।
जी फरमाइए।
अम्बानी साहब हैं?
जी नहीं, वो तो नहीं है।
माफी चाहती हूँ मोहतरमा, मैं आपको एक फोन नंबर लिखकर दे रही हूँ, आ जाए तो उनसे कहिएगा कि इस नंबर पे फोन कर लें, बहुत जरूरी काम है, याद से दे दीजिएगा, ये नंबर है, बहुत मेहरबानी आपकी।
एक दिन एक साहब भी आए थे उनको ढूंढने, उनको भी कोई काम था और वो उनके कमरे से कुछ लेकर भी गए थे।
उन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ से आए थे?
बताया तो था उन्होंने, पता नहीं माना था या मानी, कुछ ऐसा ही नाम बताया था उन्होंने, पता नहीं।
मानी?
जी जी मानी बताया था।
उनका हुलिया कैसा था?
काले रंग की जैकेट पहनी थी उन्होंने, आंखें उनकी काफी बड़ी बड़ी और चमकदार थी।
चलो मेरे साथ।
अंदाजा था इस बात का,
बाबा ने कामरान को अमानी के पीछे भेजा था, सबीता पता नहीं चल रहा ये अमानी है कौन।
जो कोई भी था मगर तुम्हारे मामा पे बहुत भरोसा करती थी, तुम्हारे बाबा से भी ज्यादा। उन्होंने सोचा होगा अगर कागजात तुम्हें ना मिले तो उसके पास रहे।
अंदर देखो जाकर, तुम वहां देखो, तुम वहां जाओ।
साहब वहां आइए।
चलो सुनो रहमती, तुम वहां जाओ।
सर वहां कामरान नहीं है।
ठीक है आगे चलो, आओ। पता चला?
कुछ नहीं पता, पता नहीं कहाँ चला गया।
चलो बाहर बाहर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जानते हो क्यों? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि तुम एक सख्त मिजाज आदमी हो, अगर शुरू में ही मुंह खोल देते तो मेरे काम के नहीं होते। आओ चलो, मैंने कहा चलो। अब मुझे कागजात वगैरह की कोई परवाह नहीं, अब तुमसे एक और काम है मुझे, आओ। अगर मेरी जिंदगी का एक दिन ही क्यों ना रह गया हो तो मैं ये समझा कर रहूंगा कि तुम किससे उलझ रहे हो। उठो उठो मैंने कहा। चलो।
तुम सोई क्यों नहीं?
मुझे नींद नहीं आ रही नीमा।
सच सच बताना, किस चीज के बारे में सोच रही हो?
अमानी के बारे में। तुम जानते हो अमानी कौन है?
अपनी जिद पूरी करके दिखाई ना तुमने। वकील के दफ्तर का एड्रेस कहाँ से मिला तुम्हें?
अमानी कौन है नीमा? अम्मी उसे कैसे जानती थी? क्या तुमने उसका घर देखा है? अम्मी ने क्यों ये वसीयत की कि कागजात उसे दे दिए जाएं?
मैं भी नहीं जानता था, इसी बात पे सोच रहा हूँ।
तुम जानते हो और आज ये बात तुम मुझे बताओगे। मेरी गुजारिश है तुमसे नीमा, प्लीज मुझे बता दो। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे माँ बाप के बीच ऐसा क्यों हुआ। अम्मी ने वो घर मेरे नाम क्यों किया? मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरा जो कुछ है सब उनका था? ये अमानी कौन है और मेरी माँ के पास इतनी दौलत कहाँ से आई?
देखो, मैं भी इसी हद तक जानता हूँ। यही सवाल तो मेरे जहन में भी चल रहे हैं।
तो फिर तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं?
मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा जहन इन मसाइल में उलझे। कुछ गलत किया क्या?
तो तुम्हें पता है कि अमानी कौन है?
फर्ज करो एक खुदा का बंदा।
नीमा
बोलो,
मेरे साथ सच्चाई से पेश आओ।
मैं खुद भी नहीं जानता कि अमानी कौन है। मैं खुद भी इसी सवाल की खोज में हूँ, मगर अभी ये मसला अहम है कि अमानी कहाँ है ये तो पता चले।
वो कामरान के पास है।
तुम्हें कैसे पता?
पुलिस को भी पता है।
हाँ, मगर फिलहाल ना तो कामरान की कोई खबर मिली है और ना ही अमानी की
और ना ही हमारे बाबा की।
हेलो,
क्या दिलदार साहब बात कर रहे हैं?
जी हाँ, फरमाइए।
दिलदार साहब, आपसे इल्तिजा करती हूँ, आप यहाँ आइए और मेरी मदद कीजिए।
क्यों, मगर क्या हुआ?
मलिया सुबह से घर से गायब है।
क्यों?
जहाँ भी मुमकिन था फोन कर चुकी हूँ, मेरी बच्ची खो गई है।
खो गई है? कितनी बार आपसे कहा था मीजान, उसका ख्याल रखिएगा, उस पर नजर रखिएगा, कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे।
हाँ, मैंने कितनी बार उसे समझाया बुझाया, आप खुद उससे वाकिफ हैं कितनी जिद्दी है, कहाँ सुनती है वो किसी की। आप जानते हैं वो बहुत जिद्दी है, अनापरस्त है, किसी की नहीं सुनती, मैं अकेले उसको नहीं संभाल पाती।
अब आधी रात के वक्त कहाँ ढूंढे उसे? किसी थाने वगैरह में पता किया, फोन किया किसी को?
वहाँ भी फोन किया था, उन्हें भी नहीं पता उसका। मेरा तो ख्याल है हमें उसको अस्पतालों वगैरह में तलाश करना चाहिए।
यहाँ भी कोई खैर खबर नहीं। हायदा के घर का मालूम है आपको?
नहीं, मुझे उसके घर के बारे में कुछ पता नहीं है।
ठीक है, चलते हैं फिर।
कहाँ?
क्या पता।
देखो मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम मेरी गाड़ी क्यों नहीं लेके गई?
क्योंकि मुझे कुछ काम थे नीमा, और मैंने सोचा आप लोगों को भी गाड़ी की जरूरत होगी, इसलिए मैं घर आई और अपनी गाड़ी ले गई।
नशीद, फिलहाल कल रात वाली बात पे अपने बाबा से कोई बात मत करना, ठीक है?
नहीं, मैं खुद भी बहुत सी चीजें समझ गई हूँ और मजीद समझना चाहती हूँ।
हाँ, क्योंकि ये हमारा सिर्फ एक अंदाजा है, सिर्फ अंदाजा है, एक हमें यकीन नहीं है। हमें लगता है कामरान ने तुम्हारे बाबा के हुक्म पर अमानी को अगवा किया है।
मुझे पता होना चाहिए कि अमानी कौन है और ये मेरी जिंदगी में अचानक कहाँ से आ गया। नीमा, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? फिलहाल खुदा हाफिज।
क्या तुम्हारी आवाज गायब हो गई है? हेलो 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 महशीद, हेलो, कट गई कॉल।
तकदीर को रोका नहीं जा सकता, अब जबकि वो खुद ही सब कुछ समझ रही है तो उसे आखिर हद तक पहुंचने दो।
आप तो अब तक ये बोलते रहे कि महशीद को कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए।
हाँ, मगर अब वो खुद ही संभल रही है कदम ब कदम। महशीद एक नई जिंदगी शुरू कर रही है, तुम उसकी मदद करो।
वो जानना चाहती है कि अमानी कौन है।
अमानी जो भी है एक अच्छा इंसान है, मुझे उसके हवाले से गलत फहमी हो गई थी। मुझे यकीन है अब वो सब कुछ छोड़ देगा।
कैसे?
मुझे लगता है कि कामरान अब तक अमानी से कागजात के बारे में उगलवा नहीं सका, वरना अब तक कागजात फरीदून के हाथ लग चुके होते।
तो बाबा, क्या आपको यकीन है कि कागजात अमानी के पास ही है?
वो अपनी बेजबानी में ही कुछ बातें मुझे समझाना चाहता था। मंसूर ने पूछगछ के दौरान बताया है कि उसने कामरान को बताए बगैर ये काम किया है, मतलब ये कि वो कुछ फायदा उठाना चाहता था।
यानी दर हकीकत अमानी ने मंसूर को इत्मीनान बख्शा ताकि एक मुनासिब मौके पे आपको फोन कर सके।
और वो बगैर बोले मुझे ये समझाना चाहता था कि कागजात कहाँ हैं,
खास तौर पे जबकि अमानी खुद ये महसूस कर चुका था कि मुमकिन है वो मर जाए, और उसने सोचा कि वो मर जाएगा तो कागजात का किसी को पता ही नहीं चलेगा।
तुम अपनी उस बेकार गाड़ी को स्टार्ट करो, हमें फौरन निकलना है।
क्या मतलब? यानी मुझे दोबारा से छुट्टी लेना पड़ेगी?
जो बेटा न समझे मुरादे पिदर, वो बेगाना होगा, नहीं है पिसर।
माना कि आपके वालिद आलिम फाजिल थे और उनके फजल से आप समझदार निकले, मुझे क्या हासिल हुआ?
हासिल बाद में पता चलेगा, चलो जल्दी चलो। मेरे ख्याल से मैं कागजात के ठिकाने को समझ चुका हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। समधी साहब कैसे हैं?
मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
बहुत शुक्रिया।
हाँ जी, हाँ, कैसे?
बस यूँ ही आ गई थी। बाबा कहाँ हैं?
दिलदार साहब आज आए नहीं हैं। उनके मोबाइल पे भी फोन कर रहा हूँ तो बंद जा रहा है। घर पे भी फोन किया मगर कोई उठा नहीं रहा।
तो कहाँ चले गए?
हो सकता है कि वो अपनी नई जौजा के घर चले गए हों। मैंने सुना है कि वो प्रेग्नेंट हैं।
प्रेग्नेंट है?
जी।
उनका नंबर है क्या? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, क्या मेरे दिलदार साहब से बात हो सकती है?
जी बिल्कुल, आप एक मिनट होल्ड कीजिए।
जी फरमाइए।
नए आने वाले का कदम मुबारक हो बाबा।
मैशी तुम हो? हेलो, मेरी आवाज सुन रही हो मैशी? अरे कुछ जवाब तो दो।
अब क्या बोलूं मैं, आपने कुछ बोलने का मौका ही नहीं छोड़ा।
देखो मुझे तुम्हें कुछ समझाना है, कुछ बताना है, तुम्हें मिलना होगा मुझसे मेरी बेटी। कोई बातें ऐसी हैं कि तुम्हें बताई नहीं है मैंने।
आपने मुझे बहुत सी बातें नहीं बताई, अब कोई फायदा भी नहीं है। जितना जानूंगी आपसे उतनी दूर चली जाऊंगी, अब मैं आपको देखना भी नहीं चाहती बाबा।
महशीद, हेलो महशीद मेरी जान।
उम्मीद है आने वाले के लिए आप अच्छे बाप साबित होंगे, मेरे तो आप अच्छे बाप नहीं बन सके।
महशीद
डरो नहीं, मैं इतना जालिम नहीं कि तुम्हें इस काल कोठड़ी में अकेला छोड़ के जाऊंगा। मैं शहर जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक मुनासिब जगह देखने के लिए। जब तक तुम यहीं रहोगे, अगर भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे आने तक सोच लो तुम्हें क्या करना है। अगर अब मुंह नहीं खोला तो हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगा।
आपने मुझे बताया नहीं कि वो कहां होंगे।
पहले मुझे ये बताओ, घर और कंपनी के तमाम कागजात किसके नाम पे थे?
जाहिर सी बात है, खुदा उनकी मगफिरत करे, नसीन साहब माशीद की अम्मी।
अमानी ने कागजात को उनके असली मालिक के पास पहुंचा दिया है, मतलब नसीन साहब की कब्र के अतराफ में कहीं दफना दिया है।
सच पूछे तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो।
फोन पे क्या बातें कर रहा था वो?
मुझे क्या मालूम आपसे क्या बातें कर रहा था।
अरे कब्र और उसके कुतबे की बातें।
तो
वाकई अमानी एक सच्चा अमानतदार आदमी है।
ठीक है, चल के देख लेते हैं शेरलॉक साहब। बहुत खूब,
चलकर देख लेना। चलो जल्दी करो। मुझे यकीन है यहीं कहीं होना चाहिए।
आपके इस दोस्त ने वाकई कमाल कर दिखाया, अब इतनी सारी कब्रों में कैसे ढूंढूं पता ही नहीं चल रहा।
मुझे पूरा यकीन है मिल जाएगी।
नाकाम नौजवान, उम्मीद कुर्बानी, नन्ना बच्चा अली रहमानी।
आखिर वो यूं ही ख्वामखा कब्र और कुतबे की बात क्यों करने लगा? यकीनन यहीं कहीं है।
आपने इन कामों से ये साबित कर दिया कि आप एक रिटायर्ड शुदा शेरलॉक।
अभी देखना तुम, मोबाइल तो मैं देखता हूँ। वो जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बल्कि खुद ही लगाओ माफी का नंबर, मिलाओ जरा।
मरहूम जवाद फुर्सती। हेलो हेलो, ये बात कीजिएगा।
हेलो, अरे माफी कहाँ हो तुम?
अरे खैरियत तो है वसूख साहब, आज कैसे याद कर लिया आपने हमें?
देखो अगर कहीं भी हो फौरन यहाँ आओ।
कहाँ बुला रहे हैं आप?
अरे कब्रिस्तान जो तुमने बताया था, कौन सी लाइन, कब्र का नंबर क्या था, बताओ।
क्यों आए हो यहाँ?
तुमसे काम है, जब ही आया हूँ।
कामी साहब अब हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, सिर्फ कपड़े रह गए, कहें तो वो भी दे दूं।
तुम्हारे कपड़े कौन मांग रहा है?
उस गाड़ी को मुझे नुकसान में बेचना पड़ा, गाड़ी ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी। हर दफा काले कपड़े पहनकर आ जाते हो, कपड़े भी ब्लैकलिस्ट, गाड़ी भी ब्लैकलिस्ट, हमें भी ब्लैकलिस्ट करके चौराहे पर टांग दो।
मुझे कुछ कहने देंगे आप?
फरमाइए।
गाड़ी नहीं चाहिए मुझे, एक जगह चाहिए खुली और कुशादा।
वो किस लिए चाहिए आपको?
एक मेहमान के लिए।
अगवा कर लिया किसी को?
इससे पहले तो तुमने कभी नहीं पूछा, आज क्या हो गया, पुरानी दोस्ती भूल गए क्या?
दोस्ती के क्या भाव हैं आजकल, कहीं दिखे तो हमारा सलाम कहना उसे। अब मुझे भी मंसूर की तरह जेल भेजना चाहते हो क्या?
मंसूर ने हिमाकत की है, वो मुझे धोखा देना चाह रहा था सिर्फ 2 लाख के लिए। मुझसे बोलता मैं खुद दे देता।
ये इसी का नतीजा है।
कम एहसान नहीं किए तुम पे, तुम्हारी जमानत देने कौन गया था? याद नहीं 3 साल पहले तुम्हारी जमानत के कागजात पे साइन मैंने किए थे।
इजाजत है अब मुझे गाड़ी ले जाने की? हमसे गाड़ी मांगी, हमने वजह ना पूछी और दे दी।
इस तरह
कामी साहब अब हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए।
वो गाड़ी की चाबी मुझे दे दे, लाए दे।
अरे बाबा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो पुआरो साहब?
यहीं कहीं थी वसूख साहब, मैंने उसकी कब्र पे निशानी भी लगाई थी।
तो उसकी कब्र का नंबर लिखना था ना।
आ जाए, वो रही, ये रही वसूख साहब, जल्दी आए। ये देखिए अहमद आमानी,
यही है। उस तरफ देखना नीमा,
यहाँ तो सिर्फ सीमेंट है,
यहाँ तो सब पक्का है,
यहीं कहीं होना चाहिए। सब्र करो,
हो सकता है इसी के अंदर हो।
अरे ये रहे, देखो ये पकड़ना, एक मिनट रुको।
मान गया मैं आपको।
अभी आपने देखा ही क्या है?
अब तो आपको शेरलॉक होम्स कहने का हक बनता है मुझे।
और हम क्या हैं?
तुम थाने के मददगार मुआविन हो।
अरे ये क्या, इस कदर पीछा, तफ्तीश और पुलिस के चक्कर, सिर्फ कागज के चार टुकड़ों के लिए?
न सिर्फ तुम्हारी तफ्तीश और पीछा करना, बल्कि ये सारे वाकयात दिखाओ जरा।
हाँ यहाँ कुछ लिखा है।
अच्छा,
सब कुछ महशीद के नाम कर दिया है। ममकानी के दफ्तर की वकालत की मोहर भी
लगी। जरूर यगाना है।
ममकानी कौन है?
देखा देखा ना, यगाने के बारे में तुम्हें गलत फहमी थी।
मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यगाना एक शरीफ आदमी।
हाँ बिल्कुल।
ये रहे वो जायदाद और इमलाक के कागजात जिनके पीछे इतना तमाशा।
ये लो बेटा।
लाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। अमानी कहाँ है, मिल गया आप लोगों को?
अमानी ने मुझे फोन किया और कागजात का पता बता दिया।
अच्छा, अरे तो खुद लाके क्यों नहीं दिए उसने?
वो खुद ना आ सका, फंसा होगा कहीं।
यकीनन कामरान के हाथों में फंसा होगा।
क्या फर्क पड़ता है, असल बात यह है कि हमें कागजात मिल गए और इस वक्त असली मालिक के हाथ में।
जी नहीं, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि अम्मी उसे किस हवाले से जानती थी।
जी अच्छा।
पुलिस को कामरान का ठिकाना मिल गया है, इन्हीं दिनों अमानी कामरान के चुंगल से छूट जाएगा। माशीद बेटी, मेरे ख्याल से अमानी को पहचानने के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। मेरी राय यह है कि आप अपना खाना जल्दी खा लो और सो जाओ, कल हमें बहुत काम करने हैं, वकील के दफ्तर जाना है।
ठीक है बाबा जान।
कौन हो सकता है?
पता नहीं, मैं जाके देखता हूं। कौन?
बिन बुलाए मेहमान कबूल है आपको?
दिलदार साहब आप हैं, आइए आइए। माशीद,
क्या हुआ?
तुम्हारे बाबा हैं।
माशीद,
कितना भागा था मैं इन चंद कागज के टुकड़ों के पीछे, खुदाया मुझे पता ही नहीं था जिस कदर इनके करीब होते जा रहा हूं, अपने वजूद के टुकड़े खो रहा हूं। जब अपने अंदर झांकता हूं तो देखता हूं मुझ में तो कुछ भी नहीं बचा, एक टुकड़े टुकड़े वजूद बिल्कुल बिखरा हुआ। अफसोस,
सब झूठ है, झूठ।
पता नहीं, पता नहीं दोबारा अपने आप को पाने की मोहलत भी मिलेगी या नहीं। उम्र गुजार के समझ में आया मैं हार गया हूं वसूफ साहब, कभी भी मेरे साथ ऐसे हालात नहीं हुए। एक तरफ माशीद और दूसरी तरफ शोहरा।
तो क्या आपने महशीद से वादा नहीं किया था कि शोहरा को तलाक दे देंगे?
वो प्रेग्नेंट है।
खुश रहे, मुबारक हो आपको।
ताना दे रहे हैं वसूफ साहब, इस बुढ़ापे में मुबारकबाद का हक बनता है क्या?
नहीं नहीं, बच्चे तो आदमी को जवान कर देते हैं, इंसान में जीने की उमंग पैदा हो जाती है। बच्चे तो वो फरिश्ते होते हैं जो इंसान की रूह को लुत्फ बख्शते हैं।
मतलब अब महजीद का एक छोटा भाई भी है?
हो सकता है एक बहन
और शायद कुछ भी नहीं। शोहरा मुझसे लड़कर बच्चे को जाया कराना चाहती है।
तो आप उसे रोके?
वो जा चुकी है कहीं दूर, कोई अता पता नहीं उसका।
यानी खो गई है?
डर है बच्चे की जिंदगी न खत्म करा दे।
कोई नंबर, कोई पता, कुछ तो होगा।
उसकी एक दोस्त है जिसका नाम है हायदा, वो शादी का दस्तरखान किराए पे देती है। अगर आपकी तकरीब में भी थी
तो मेरे ख्याल में आप उसे पहचान सकते हैं।
मुझे याद नहीं आ रहा।
मगर मशीद को मालूम होगा, मशीद को उसका पता ठिकाना सब मालूम होगा।
मशीद, 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 तुम्हें हायदा का पता मालूम है जिसने हमारे निकाह का दस्तरखान से? क्या हुआ?
मुझे जाने दो नीमा।
कहाँ?
नीमा तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे जाने दो।
ये क्या तरीका है? वो तुम्हारा बाप है, गलत बात है।
मुझे कोई बात नहीं करनी है उस आदमी से।
चलो वहाँ चल के बैठो, पर्स मुझे दो।
देखो नीमा, मैं यहाँ नहीं रुक सकती उनकी मौजूदगी में। मैं जा रही हूँ अपनी सहेली के घर।
उस कमरे में जाके अपने बाप के पास बैठो। गलत बात है, तुम जिद क्यों कर रही हो? वो हमारे मेहमान
हैं। क्यों नहीं, मैं नहीं जाना चाहती उनके सामने। जिद क्यों कर रहे हो?
लड़ो मत, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरी जगह नहीं है, मुझे माफ कर देना।
अरे दिलदार साहब, कहाँ जा रहे हैं आप?
यही चाहती थी ना तुम, खुश हो गई अब? दिलदार साहब, दिलदार साहब मेरी बात सुने।